Ashram of Ambarish was on the other side of Yamuna, here, very near us. And Durvasa and Ambarish, you know that path, right? Durvasa and Ambarish, you all know all of them. This is a very strange thing. In the time of Ramchandra, in the last Ramchandra ji ke antim samay mein, Durvasa ji Ramchandra ji ke paas mein gaye aur unhone kaha ki aapse koi gupta mantra hai, yadi koi isme sutra na aa jaye. Us samay mein bhagwan Ramchandra ji kal se baatchit kar rahe the Ayodhya mein. Durvasa ji aaye, bole ki hum abhi Ram se bhet karenge. Ramchandra ji ne kaha tha jo aayega usko hum jaan se maar dalenge. किंतु दुर्वासा ने कहा कि अभी मैं राम से भेंट करूंगा, यदि आप लेने चलोगे तो मैं अभी संपात कर दूंगा, राम लक्ष्मण और तुम लोग सभी लोग मारे जाओगे और अयोध्या की प्रजाएं भी नष्ट हो जाएंगी. एट लास्ट डेट ऑफ रामचंद्र रामचंद्रवाद कम कम डिस्कसिंग विथ का लाइक डे एंड सी हैज taken a word from Ram that if anyone comes and disturbs in our meeting, he should be shooted. Ramchandra told that, yes. But Durvasa came at once and told Ramchandra that at once I want to meet Ram. He told them what to do. At last, to save Ram himself and the whole kingdom, he went to Ram and told that Durvasa wants to meet him. Then Ram told, you bring him, but how you can? I promise that those who will come and disturb for talking, I will shoot him. He told that I knew you can shoot me. He told that I will not shoot you, but I want that you to go away from me for whole life. मैं तुम्हें बात तो नहीं करूंगा लक्ष्मण जी, किंतु मैं तुम्हें सदा के लिए मैंने प्रत्याग कर दिया और उन्होंने उनको छोड़ दिया. वे यमुना के तट के किनारे जाकर के जानस तो करके बैठ गए और वो ग्रुप बैठ उठने चले गए. उनके यहां से साफ निकला और वो चला गया. इस तरह से दुर्वासा जी रामचंद्र जी को बैकुंठ जाने का, अयोध्या जाने का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि राम को तो जाना ही था. राम है टू वॉज टू दिस पियर इट अपियर सो ही मेड वनली ए बहाना बनाए. आई एम स्पीकिंग इन हिंदी एंड यू टू यू टू ट्रांसलेट इट विल बी वेरी गुड. इसके बाद में द्वापर युग में कृष्ण जब यहाँ आए तो दुर्वासा जी भी यहाँ आए. जब कृष्ण गोकुल में थे तो ये गोकुल में उनको दर्शन करने के लिए गए थे और कृष्ण के मुख में प्रवेश कर गए और लाखों कोटि वर्ष तक उनके मुख वो कृष्ण के पेट में ही घूमते रहे और अंत में उनको निकाल दिया. तब फिर निकल करके आए और भी गोपियां श्रीमती राधिका जी के यहाँ ये गए बरसाने में जब राधा जी छोटी थी और उन्होंने विश्वान महाराज ने दुर्वासा की सेवा में इनको लगा दिया. उन्होंने बड़ी सुंदर से छोटी होती हुई बालिका सुंदर रसोई बनाया और दुर्वासा जी को प्रसन्न किया. दुर्वासा जी ने इनको बर दिया, ये आज से तो तुम रसोई बनाएगी, अमृत से भी अच्छा सुस्वादु होगा और जो उसको खाएगा विश्व में अजर अमर बन जाएगा और किसी से भी पराजित नहीं होगा. इसलिए यशोदा जी राधा जी को बुलाती थी, जो कृष्ण के लिए ये भोजन बनाती थी, बहुत ही स्वादिष्ट फलवर्धक और सब प्रकार से. इसके बाद में कुंती जी को भी इन्होंने ही वरदान दिया था. और भी सुना जाता है कि एक समय गोपियां ब्रज से निकल करके यहाँ पर आना चाहती थी उनको लेकर के कुछ खिलाने के लिए, किंतु यमुना में बहुत बाढ़ आई थी। उस समय में गोपियों ने कहा कि हम कैसे पार करें। कृष्ण ने कहा कि तुम कहना, यदि आज तक मैंने किसी स्त्री जाति को मैंने नहीं देखा, उसे कोई संबंध नहीं है, तो हमारे नाम को करके और यमुना को तुम पार कर जाए। उन्होंने यही कहा कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और स्त्री को कभी नहीं देखा, इसलिए आपके प्रताप से हम लोग यमुना जी को पार कर गए और करते हुए लाखों कोटि गोपियां अपने सिरों पर थाल लेकर के और तरह तरह के पकवान लेकर के उसको पार में चली आई। जब दुर्भाषा के पास में आई तो दुर्भाषा जी की यहाँ पर थे, उनको प्रणाम किया और उनको सारे भोग अर्पण कर दिए लाखों लाखों गोपियों ने। उन्होंने एक मिनट के अंदर में दोनों हाथों से उठा करके उसे खा गए और कभी पेट नहीं भरा। तो गोपियों ने कहा कि हम तो ऐसे ही हैं, हमारे पास में और कुछ नहीं, अपने आप प्रसन्न हो जाइए। जब उनको खिला खिला करके संतुष्ट कर दिया तो दुर्भाषा ऋषि जी से उन्होंने पूछा, महाराज अब हम कैसे पार जाएंगे? आ तो कैसे आई? तो कृष्ण ने कहा कि यदि हम बाल ब्रह्मचारी हों, कभी इसे नहीं देखा हो, तो मैं घर से चले आऊ पैदल। तो हम ऐसे पैदल चली आई। अब कैसे जाए? तो दुर्भाषा जी ने कहा, यमुना जी से जाकर के कहना कि हमारे दुर्भाषा ऋषि जी आज से जन्म से लेकर के अभी तक यदि कोई चीज ही नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया या पिया, तो उनके के द्वारा प्रभाव से हम यमुना जी को पार करते। वो भी यहां सुन ली जैसे एक कृष्ण जगत गुरु है झूठों का, झूठों का पुलिंदा कृष्ण है और उनके गुरु आप। वो सत्य में स्त्री के पेट से जन्म लिया और बचपन से गोपियों के साथ में रहा, उन्होंने राज किया, गोपियों के साथ में लिप्त किया और अब वो कहता है कि मैंने स्त्री को कभी देखा ही नहीं, ये सफेद झूठ बात। और तुम कहता है कि हमने कभी नहीं खाया है तुमसे जीवन में और हमारे समय लाखों थाल परोसा हुआ है, तुम खा गया एक मिनट में, और तुम कहता है कि मैंने खाया ही नहीं। तो ये झूठों का तुम गुरु है, गुरु का गुरु, तो इसका तात्पर्य क्या है हमारे समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा दुर्भाषा जी ने, जाओ कृष्ण से ही इसका रहस्य पूछना, तुमको बदला दे। लौट करके कृष्ण के पास में गई। कृष्ण उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण से ये प्रश्न किया, उस समय कृष्ण ने बताया, देखो संसार में कहीं भी हमारा भक्ति का अभिमान नहीं कि मैं भोक्ता हूं, मैं सब कुछ खाकर के, मैं सब कुछ देकर के भी मैं कुछ नहीं करता, मैं जगत में हूं और जगत में नहीं भी हूं, क्योंकि मेरा इसमें अभिमान नहीं है, कोई स्कूल अभिमान नहीं है, स्त्रियों के प्रति हमारा कोई अभी अभिमान है, सारी जगत की सारी शक्तियां हमारी शक्ति है, इसलिए मैं किसी स्त्री को आज तक किसी के रूप में नहीं देखा जैसे संसार के लोग देखते हैं। और दुर्भाषा जी का नाम दुर्भाषा इसलिए है, दुर्भाषा माने गंदे कपड़े और जैसे मिलता है अपने अंग को लपेट कर कराते हैं, इसलिए दुर्भाषा। पाठ माने होता है बर्तन कपड़ा, उनको ध्यान नहीं रहता है, अथवा रूप का, रूप के हरि गुणों का जो रस केवल जीवन में ग्रहण करता है और कुछ नहीं करता, इसलिए वो दुर्भाषा से अपने जीवन को ध्यान करने वाला दुर्भाषा। किंतु यद्यपि वो पहले जो भी थे ब्रह्मयोगी थे, निराकारवादी थे, किंतु पीछे थे महाराज अम्बरीश रूपी भक्त से संग पाकर और पीछे थे और भक्तों का संग मिला, रामचंद्र जी के पंचों का संग मिला और इसके बाद में यहाँ पर गोप गोपियां का संग मिले थे, परम भक्त हो गए थे और कृष्ण की विविध प्रकार से सेवा की, यहाँ तक द्वारका इत्यादि में भी उन्होंने बहुत सी सेवाएं की हैं। हमने एक पुस्तक में ये सब चीजें लिखी है, आप अंग्रेजी में भी ये है, शायद वृंदा के पास में होगा या किसी के, वृंदा जी के पास में है, मथुरा में है, आप लोग लगे और हिंदी में भी मैंने लिखा है, संस्कृत से आज तक का विकास किया। आई थिंक दैट बट आई हैव रिटन इन इंग्लिश थी लाइफ एंड लाइफ ऑफ दुर्वासा यू कैन हैव इन वृंदा विथ वृंदा इन मथुरा। Now, it is, it says something about this, and after that, this is the offer to Mahaprasadam. So, Durvasariji, you should take it, you should take, and then you will return. In the way, you will see, Vyasdev Ashram. Vyasji ka hum ashram dekhenge, jahan par ki Vyasji ka janam hua tha, Yamuna ke bitar mein. When he was coming, Parashar Rishi from Mathura, Satyavati was there, and at once a boy came out from his home, and he was Vyasdev. Also, Parashara, the father of Vyasdev, used to be very adjacent on the bank of Yamuna, and we have some land there, and he will make the ashram of Parashara ashram. यहीं पर अम्बरीश जी का यहीं से दिखेगा, हम आपको दिखलाएंगे जी अम्बरीश महाराज जी का टीला, वहां पर हम जाकर के यहीं से देखेंगे। और मथुरा की परिक्रमा यदि होगी तो अम्बरीश टीला भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, जहां पर वो चक्र इनका पीछा किया दुर्वासा जी का, वो चक्र भी मथुरा में है यमुना के किनारे, उनके प्रार्थना से वो चक्र लौट गया, वो भी उसका शास्त्रीय टीला था, उसका भी हम लोग दर्शन करें। इस तरह से आज हम लोग यहाँ का दर्शन करके फिर अभी मथुरा में लौटे और वहां जाकर के पूज्य वासुदेव महाराज जी का हम लोग जन्मति थी। गौ ब्रह्मानंद
This is not a new place, Maharaj has already told us. Very, very ancient. I think so much ancient that word ancient itself says. Even before Satya Yuga, Maharaj ji has said that Durvasa ji is incarnation of Shankar ji. In fact, Atri and Antriya. Atri is father of Durvasa, Dattatre and Chandra. Chandra means moon. And their mother is Anusuya. So Durvasa's father is Atri and Anusuya is mother. Maharaj is giving the history of this whole place, that it is before even Satyuga, at the time of Satyuga, because pastime of Amrish Maharaj took place just at the advent of Treta Yuga. End of Satyuga and advent of Treta Yuga. So at that time also Durvasa Rishi was there. So Maharaj was saying that when Ramchandra was here, at that time also Durvasa's pastime is, we know it. Once when Ramchandra ji was having kingdom in Ayodhya, at that time he had a very, very confidential meeting with Kal. Kal means time, and at that time Kal has taken a vow from Ram that no one will disturb this meeting, and anyone comes, he will be killed. At that time, Durvasa reached there, and he was very much in hurry to see Ram. He said, I want to see Ram just now. And at that time, Lakshman said, it is very difficult because Ram has given vow that whoever will go there, he will be killed. He said that he will be killed. I will tell you that your whole dynasty will be killed. So, it is very urgent and I want to see Ram right now.
Then Lakshmana thought that it is better if I get killed instead of my whole dynasty. So he went to Ram and said that Durvasa wants to see you. Kingdom, not only dynasty, whole kingdom will be cursed and will die. Then Ram said, how have you come? I have given the word that I will kill anyone who will disturb. He said, I knew it. But Durvasa was going to give curse that whole kingdom will be burned to ashes. He said, okay, then I will not kill you. He said to Lakshmana, I will not kill you, but I will give you up. I will not see you since onwards. And then he asked Lakshmana to leave that place. Lakshmana went to the bank of Saryu, and from there he went to his abode. Maharaj was saying that he took in the form of Sheshnag, and it was said that he went to his abode like this. This way, Durvasa played a very important role for Ram to go back to his abode, Aparagadham. Then Maharaji was saying that we see that during Gokul time, when Krishna had pastime here, that Durvasa went to Gokul. Gokul is across Yamuna. So many millenniums, what you call, so many kalpas, and he served so many universes in Krishna's mouth. Then Krishna again laughed and he came back. This pastime was shown to Durvasa by Krishna. Then Maharaji was narrating a very important and very prevalent pastime which most of us also know, that one, so many gopis, lakhs gopis, they wanted to go to Durvasa Rishi and offer him delicious prasad. So they took that very nice prasadam, and on the nice plate they put on their head, and they wanted to cross Yamuna, but they saw Yamuna was in flood. It was very difficult to cross. They asked, how can we cross it? Meanwhile Krishna reached there. And he was smiling. They said, Krishna, we want to cross Yamuna and want to give this prasad, we want to offer this prasad to Durvasa, what should we do? Well, if you are really interested to pass cross Yamuna, you go and ask Yamuna that if Krishna is Bal Brahmachari, he is celibate from his childhood and has never seen face of any woman in his life, then, oh Yamuna, you please give the way. Then Gopi just had a smile, say, what he is saying. Anyway, they said this thing to Yamuna, and Yamuna immediately gave the way. They crossed the Yamuna without any difficulty. Durvasa Rishi was there. They offered their prayers to him, and then gave every food which they brought from their house. Durvasa Rishi very, very quickly with his bowl and hence he ate all the food. Millions of gopis brought whatever they brought, and he ate them, and he was ready to eat more. The gopis said, oh, please be happy, we are so village girls, we can't bring you more. He said, okay. Then gopis had the same problem to cross it again. Then they said that we want to cross Yamuna. What is the way? They asked Durvasa Rishi. Durvasa said, how did you come? He said, they said that we came this way. Krishna gave us this instruction and we followed it and we could. He said, okay, then I give you another instruction. Go to Yamuna, pray to her that if Durvasa has never eaten anything in his life from his childhood, oh Yamuna, please give the way. And they prayed the same thing. Before praying, they said, we know one big liar of the world. He is master of the all liars.
Krishna. And he said that if he has not seen the face of any woman, then O Yamuna, you please give the way. Person who has taken birth from the womb of a woman, and in the womb of a woman he was always interested in women, and now he has prayed a lot and asked everything, and he is saying that if he has not seen the woman, then O Yamuna, please give the way. And right now, we all millions of gopis have given you so much of the food and stuff, and you have eaten it so rapidly and are demanding more. And you are saying, and ask Yamuna, if I have not eaten anything in my life from the childhood, O Yamuna, you give the way. You are master of that, master of liars. So I think this can happen like this. We don't know what is the fact in this. They said, oh, you want to know the fact? You ask the same question to Krishna. He will reply you. Well, they said the same prayers to Yamuna, and Yamuna gave the way. They crossed the Yamuna very easily. At that time, Krishna was standing there, rather waiting for them, and very with crooked smile, he welcomed them. You have done okay. Then they asked the same question, that how it happened? We understand that you are bigger liar and he is the master of that liar, but however, how it happened? Because of lie, it can never happen that Yamuna will give the way. He said, look, all the women, all the females you see are connected to me, are nothing but my own potency. So my relationship with this woman is not as the relationship an ordinary man has with other women. So I have never seen any woman, I have never touched any woman, I have never had any relationship with this woman as generally other men have with the other women. So my statement that I have never seen a woman is in this relation, and you should understand. Similarly, Durvasa Rishi, he has not eaten anything because his desire there is no desire for him to eat. He has just engulfed it as your offering, and he always accepts whatever he accepts to Lord. He does not accept anything for himself. He has no his own desire to eat anything. So he said that I have not eaten anything. This way, Krishna explained the thing, which is very interesting. Now, Maharaj is saying that Durvasa, the name Durvasa is having two significants. Two means bad, and one means close. Who is so much absorbed in Krishna's bhakti that his clothes are dirty and he never cares for them, so his name is Durvasa. Maharaji is saying that earlier, during the time of Satyuga, he was yogi and he used to worship his nirakar form. Nirakar means formless. He had the opinion that the God has no form. But with the association of Amrish Maharaj, with the previous association of Amrish Maharaj, when he had to face such a problematic situation, he started believing in the form of God. And then later on, with Ram and his association, he could have his association. And then finally with Krishna and the themselves of blood and others, he became a strong devotee of Lord. Another meaning of Durvasa Maharaji was telling that there is a grass which name is Doom. So the person whose life is based on the juice of that grass, who lives on that juice of that grass, he is Durvasa. So Durvasa Rishi's many pastimes have been narrated by Maharaj in a book. It is both in Hindi and English, and you can get it from Mathura temple. I think all of us should have this book. Bhakt Premanande. Now we will take prasad here.
Palachanda Prabhu, Subhananda, Nishimhananda, and some of our brahmacharis will go to Durvasa Rishi temple. वहाँ पर आप लोग जाइए और वहाँ से प्रसाद ले आ करके इन सब लोगों को जीतन में पहले ले करके और फिर घर वाले जो बाहर में हैं खड़े हैं उनको भी दीजिए। आगे चल जाइए। और ब्रह्मचारी हमारे भगवत चले जाए, कृष्णदास जाओ और जो ब्रह्मचारी है हमारे गोसा चले जाए, नॉट आउट सुदर्शन नहीं हो सुदर्शन नहीं है और वहाँ से हमारे जब एक ही है आप जाए।